آو علم سیکھیں، آو علم سیکھیں، آو علم سیکھیں، آو علم سیکھیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی سمجھ بوجھ بھی اچھی طرح ہمیں عطا فرمائے. عقائد کا جب آدمی کو علم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سے ایمان کی حفاظت ہے، ایمان کا تحفظ ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، تو جب ان کو ایسا علم نہیں تو بعض اوقات اس کے انکار یا اس کے حوالے سے وسوسوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اور ایسے مسلم عقائد جن کا شمار ضروریات دین میں سے ہو، ان کے انکار کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. یعنی ہر مسلمان کو اس حوالے سے سنجیدگی بھی اختیار کرنی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے لازمی طور پر. جہاں ہم کتب کے اندر اور حدیث پاک کی شروحات میں طلب علم کے حوالے سے کہ علم طلب کرنا اور علم طلب کرنے کے یہ فضائل ہے، اور بلکہ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین طلب کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس کی شرح کے اندر علماء کرام نے بالکل واضح طور پر علوم کی ایک طرح کی فہرست بیان کر دی ہے، ان علوم کی پوری تمہید بیان کر دی ہے اور ان کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی ہے کہ کون سے ایسے علوم ہیں جن کا سیکھنا انسان پر فرض ہوتا ہے. وہ ہر مسلمان پر ہے، مرد پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے. اور اس حدیث پاک میں کون سا علم ایسا مقدم علم، تو فرمایا سب سے مقدم علم وہ عقیدے کا علم ہے، عقائد کے حوالے سے. کہ آدمی عقیدے کے حوالے سے اتنا پختہ ہو، مضبوط ہو کہ اس کے کسی بھی طرح عقیدے کے اندر کوئی بھی کمزوری ضعف نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسی ذوق والی کمزور وہ بات کرے کہ جو عقیدے کے حوالے سے وہ پپلے پن کا شکار ہو جائے. تو عقیدے کو سب سے مقدم بیان کیا. ایک عقیدہ کس اہمیت کے ساتھ سمجھنا ہے، ایک وہ. دوسری بات ہے کہ اس عقیدے کے برعکس کوئی ایسی گفتگو کلام نہ ہو، اور ساتھ ساتھ کیونکہ عقائد کے اندر وہ بھی عقائد بالکل ہیں کہ جن میں سے بعض کا انکار، سیرے سے انکار آدمی کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کچھ ایسی چیزیں کہ جو انسان کو گمراہ بنا دیتی، تو گمراہ بد مذہب بنا. تو عقیدے والے پہلی کیٹاگری کہ جس کی وجہ سے اس کے ایمان کا تحفظ ہو، اس کے ایمان کی حفاظت ہو، یہ سب سے زیادہ اہم. پھر اس کے بعد وہ آدمی اپنے آپ کو بد مذہبیت سے بچانا، گمراہیت سے بچانا، یہ اس کی بھی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد علماء کرام نے ان چیزوں کو بیان کیا جو فرائض میں سے ہیں. اب حسب حال اس پر علم سیکھنے کے حوالے سے گفتگو کی، جس کے اوپر نمازیں ہیں تو وہ نماز کے احکام، جس پر حج ہے تو وہ حج کے احکام، جو کاروبار کرتا ہے تو حلال حرام کے احکامات، جو ملازمت کرتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے احکامات. تو پھر یہ ان کی تمام تر ڈیٹیل اور تفصیل کو بیان کیا گیا ہے. تو سب سے مقدم جس کو رکھا ہے تو وہ عقیدے کا علم، ناظرین اکرام، عقیدے کے علم کو رکھا ہے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور یہ وہی عقائد ہیں کہ جو 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم صحابہ کرام علیہ مردوان کو دی، اور صحابہ کرام سے یہ چلتا چلتا سلسلہ آج ہم تک یہ پہنچا ہوا ہے. اور یہی ناجی ہے، نجات پانے والا وہ گروہ ہے، سواد اعظم ہے. اور ہمیں حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سواد اعظم کو یعنی تھام لو، اسے پکڑ لو، اس سے جدا نہ ہو. आज अब देखें तो दुनिया भर के अंदर जो सबसे ज्यादा कसरत जिनके है तो वो अहले सुन्नत व जमात। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी वही अहले सुन्नत के जो अकायद थे, वही जो बुजुर्गों के अकायद थे, सहाबा और अहले बैत के अकायद थे, उन्हीं को आपने उजागर किया। और एक वो वक्त था कि जब उन अकायद को मिटाने के लिए या उन अकायद को ख़त्म करने के लिए तरह तरह से हरबे इस्तेमाल हो रहे थे कि किसी न किसी तरह लोगों के दिलों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, अजमत है, मोहब्बत है, वो निकल जाए। किसी तरह सहाबा की कोई मादल्ला अहले बैत तहार के ख़िलाफ़ और तरह तरह की और ऐसी चीज़ें। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उस वक्त जो उन्हीं अकायद पर एक तरह का पहरा दिया और वो तालीम आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपने उम्मत तक पहुंचाई, आपने वो किरदार अदा किया है कि वाकई आज दुनिया उनको मुजद्दिद दीन और मिल्लत के नाम से याद करती है कि वो उन्होंने तजदीद कर दी है। वो कोई नए अकायद उन्होंने नहीं दिए, वो वही अकायद हैं जो हजरत सहाबा किराम के थे, वो वही अकायद हैं जो हजरत अहले बैत तहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाई इनके थे। और फिर उन्हीं से ये सिलसिला चलता चलता आज अल्हम्दुलिल्लाह वही तालीमात और वही अपने बुजुर्गों के अकीदे आला हजरत अली रहमा ने बड़े वाज़े करके अपने फतावाजात की सूरत में और आपने अपने रसाइल की सूरत में अपने इसी तहरीरी काम के ज़रिए उम्मत तक आपने ये तालीमात पहुँचाई है। तो तालीमात अहमद रज़ा वो वही तालीम है कि जो तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और अहले बैत को तालीम दी है। तो आपने गोया कि उनके साथ जोड़ा है, मुत्तसिल किया है, जो बीच में कोई ऐसा खलल आने की कोई कोशिश कर रहा था, खलल डालने की कोशिश कर रहा था, तो आपने उसको ख़त्म किया है। ना कि ये कि आला हजरत ने कोई अलग से तालीम दी है। आज कई लोग तरह तरह की गुफ्तगू करके अकीदों में और खलल डालने की कोशिश करते हैं, वसवसे लोगों को डालते हैं कि देखो भाई आला हजरत तो अभी 100 कुछ साल हुए हैं आला हजरत अलैहि रहमा को, तो ये तो तालीम उन्हीं की। तो हरगिज़ ऐसा नहीं नाज़रीन किराम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह अगरचे आपको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए अब 100 से ज़ायद साल हो चुके हैं, लेकिन आप अलैहि रहमा एक उस घराने में जो एक इल्मी तौर पर मारूफ घराना था, मशहूर घराना था, आप उस घराने में आपने आंख को खोला और फिर शुरू से ही बचपन से ही आप इल्म दीन में ऐसे मशगूल हुए और बिलखसूस आपको जो अल्लाह पाक ने यह मलका ता फरमाया था, जो इल्म ता फरमाया था कि जिस वक्त सहूलियात नाम की कोई चीज़ ना हो, जिनकी सारी ज़िंदगी एक चराग की रोशनी पर गुजरी हो और उस वक्त कोई किसी तरह की जिद्दत ना हो, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए और उन्हीं अकायद अहले सुन्नत व जमात के तहफ्फुज़ के लिए आपका ये कलम चलता था और आपने वो अकायद वो तालीमात वो हम तक आगे पहुंचाई है। तो ये भी वसवसा जो लोगों को कि आला हजरत 100 साल पहले के हैं तो अब ये तालीम तो आला हजरत की हुई, तो आला हजरत की अलग से कोई तालीम नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो सहाबा और अहले बैत को तालीम दी वही तालीम इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की है। तो नाज़रीन इकराम, जितना आदमी अपने उलमाए हक से मरबूत रहेगा, मजबूत रहेगा, तो वो अकाबरीन की तालीमात पर ही रहेगा, वो उन्हीं अकायद पर ही गामजन रहेगा जो अकायद हमसे मतलूब हैं, जो दीन को मतलूब हैं, जो शरीयत को मतलूब है हमसे, वो उन्हीं पर रहेगा। वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी कॉल को, किसी फेल को वो ऐसे गलत करार नहीं देगा या मादल्ला उसको शिर्क से ताबीर नहीं करेगा। आज छोटी छोटी बातों को बादुकात शिर्क के ज़ुमरे में डाल दिया जाता है। यह शिर्क हुई, बज़ाहिर उसकी हकीकत को ना समझा, ना उलमा अहले सुन्नत की उन कुतुब को पढ़ा, ना देखा, ना उस अकीदे की कोई तशरीह, ना उस आदमी से कि उसके जहन और दिमाग में क्या चीज़ है कि वो उसने ये अमल किया, ऐसे ही उसको शिर्क से ताबीर कर दिया गया और नाम दे दिया जाता है ये इमाम अहमद रज़ा की तालीमातें, पहले से कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं। अच्छा किस चीज़ में? मज़ार पे ना जाओ। क्यों नहीं जाओ? मज़ार पे जाने से माज़ल्ला, कई कहते कि मज़ारात पे जो है वो शिर्क हुआ। किस मज़ार पे आपने देख लिया शिर्क हो रहा है? कहाँ देखा आपने शिर्क? हम भी तो मज़ारात पे जाते हैं और हमने बेशतर मज़ारात की ज़ियारत की है, हाज़िरियाँ देते हैं वहाँ पर। खुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक, रोज़ा अनवर, जिसकी हाज़िरी उम्मत के लिए क्या फरमाई, उसको करीब वाजिब फरमाया कि जो आदमी हज करे और मेरी ज़ियारत को ना आए, फरमाया मेरे साथ जफा की उसने, जफा की मेरे साथ। जो मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, उसके लिए शफात वाजिब हो जाती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरानवार की ज़ियारत करे। वो ऐसे ही है जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वहाँ पर वो हाजिर हुआ, उसको ये शर्फ है। लेकिन हैं कि लोगों को कुछ ऐसे वसाविश डालने में मदीना मुनव्वरा में। अब ये हाजिरी जिसको हमारे उलमा ने तो लिखा है ये करीब बवाजिब, तो सबसे बड़ा मज़ार ही वो एक उम्मती के लिए वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार पुरानवार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ है। उस मज़ार पर क्या अरबो अजम और दुनिया के सारे आप मवालिक देखें कि दुनिया भर से जो मुसलमान आते हैं वहाँ क्या इल्तिजाए लेकर आते हैं? वह हाज़िरी तो देते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी क्यों न दें? कुरान फरमा रहा है वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फरलकुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया कि अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और ए महबूब आपके पास आ जाए, आपके पास आए और अल्लाह से माफ़ी वो मांगे और आप उनके लिए सिफारिश कर दें, रसूल भी उनके लिए इस्तिगफार कर दें, उनके लिए सिफारिश फरमा दें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को ज़रूर तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। तो ये खुशखबरियाँ बशारतें कुरान भी दे रहा है, हदीस रसूल भी में मौजूद है, और ये आयत कोई बाकायदा उस वक्त की नहीं कि जो ज़िंदगी में था वही सिर्फ गया और उसको ये शर्फ मिला, नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार पर उस शख्स ने भी हाज़िरी दी कि जब हुज़ूर दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अभी पर्दा फरमाए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, मुबारक कब्र की मट्टी उठाकर वो अपने सर पर आराबी ने डाली और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें पढ़ाया हमने पढ़ा, आपने सिखाया हमने सीखा, कुरान में जो ये कहा गया वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह, अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और आपके महबूब आपके पास आ जाए और यहाँ अगर अल्लाह से माफ़ी मांगे, रसूल भी उनके लिए सिफारिश कर दें, तो ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला वो लोग पाएंगे, ज़रूर उनको पाएंगे। तो अरबी ने वो कब्र मुबारक से मट्टी अपने सर पर डाली कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, यानी गुनाह सरज़द हो गए, को गलती उनसे हो गई और हुजूर को कह रहे कि आप सिफारिश करें, आप अल्लाह से कहें आप सिफारिश कर दें। कब्र मुबारक से आवाज़ आती है कि ए अरबी जा, अल्लाह ने तेरी मगफरत कर, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरानवार पर अरबी आए, और दौर कौन सा हो? सहाबा का हो। बयान इस हदीस को मुतअद्दद सहाबा कर रहे, इस रिवायत को बयान करने वाले हदीस की किताबों में इसको लिखा, और फिर जहां भी आप तफसीर उठाकर देखें तफसीर में आपको इसी आयत के तहत ये हदीस मिलेगी। ये क्या सहाबा का अकीदा क्या कुरान हदीस से टकराता था? माशाल्लाह, हरगिज नहीं। वो आए हैं हुजूर की बारगाह में और वो ये जानते हैं हुजूर हमारे लिए एक जरिया है, वसीला है, हमारी सिफारिश फरमाएंगे। दुनिया में भी आते थे और दुनिया से हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो भी आ रहे, और ये पर्दा तो फरमाया है और ये तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत के तहत हर जी रूह को ये जायका चखना है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी हयात तय्यबा में फरमा दिया था, मेरा जिंदा रहना तुम्हारे अंदर, यानी ये हयात मेरी, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर, और मेरा दुनिया से पर्दा फरमा जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर। हुजूर का दुनिया से पर्दा फरमा जाना ये उम्मत के लिए कैसे बेहतर होगा? हुजूर इस्लाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज कर दी कि ये जिंदगी तो हमारे लिए बेहतर है, समझ में आ गया। आपसे लोग आए इल्तिजाएं करते हैं, मन की मुरादें पाते हैं, इल्म सीखते हैं, तरह तरह के ये उनको उनके काम होते हैं। लेकिन हुजूर दुनिया से चले जाना, पर्दा फरमा जाना, ये भी हमारे लिए बेहतर होगा, ये कैसे? तो फरमाया कि तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, जिनके अमल अच्छे हुजूर खुश होंगे, और जिनके अमलों में कोताही और कमी होगी हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में भी उनके लिए सिफारिश फरमाएंगे, उनके लिए सिफारिश फरमाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, मैं गुफ्तगू कर रहा था कि अब ये मज़ार-ए-पुर अनवार पर आराबी आए, सहाबा का दौर हो, कोई मना इनको नहीं करें, यहाँ क्यों आए हो, किस तरह आप हाजिरी दे रहे हो, ये क्यों कह रहे हो, नहीं। लेकिन आज के इसी दौर के मुताबिक गुफ्तगू करें तो लोगों को इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ऐसे वसवसों में डालकर टोटल उनके ईमान के ऊपर एक तरह का ढाका डालने की कोशिश की जाती, नहीं जी कब्र पर न जाएं, मज़ार पर न जाएं, क्योंकि वहाँ शिर्क होता है। कहाँ से शिर्क होता है, किस मज़ार पर आपने शिर्क देखा? आप जानते हैं शिर्क किसे कहते हैं? आप एक मुसलमान को मुशरिक करार दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाए, मेरी उम्मत से मुझे शिर्क अब खौफ नहीं, और आप लोगों को मुशरिक करार दे दें, उनको शिर्क करार दे दें। नहीं जी, हमने किसी को देख लिया था कि वो उसने सजदा किया था, हमने तो आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो मज़ार पर सजदा कर रहा हो, बाकी नहीं देखा। ये पता नहीं लोग कुछ अपने साथ ही लेके जाते हैं तो उसी से सजदा करवाते हैं और फिर उसी की तस्वीर बनाकर शायद सोशल मीडिया पे डालते हैं, हो सकता है धोखे का ज़माना है, ये भी करते। लेकिन अगर बिलफर्ज अगर कोई अपनी जहालत के पेश नज़र अगर सजदा भी कर रहा हो, तो आप किसी को इस अमल पर कैसे मुशरिक करार दे सकते हैं जब तक आप उसकी दिल की नीयत पर वाकिफ ही नहीं? ये याद रखें, सजदा इसकी दो किस्में, सजदाए इबादत और एक है सजदाए तहियत, यानी ताज़ीम में सजदा। इबादत का सजदा तो किसी शरीयत में किसी और के लिए अल्लाह के सिवा जायज ना हुआ। जिसने इबादत के लिए सजदा किया अल्लाह के सिवा किसी और के सामने वो झुका और सजदा किया, वो तो दायरा इस्लाम से है ही खारिज, ये किसी शरीयत में ही नहीं रहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत तक। आदम अलैहिस्सलाम को भी जो सजदा किया फरिश्तों ने, तो वो सजदा इबादत नहीं था, इनकी ताज़ीम के लिए सजदा किया गया था। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। लेकिन सजदा ताज़ीम उस ज़माने में हुआ। आगे चलते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने सजदा किया, आपके माँ बाप ने सजदा किया, ये क्या था सजदा? सजदा ताज़ीम था, ये सजदा तहियत था, ताज़ीमी सजदा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम आपको सजदा करें, आप हमें इजाज़त दें, ऊँट आपको सजदा कर रहे हैं, शजर व हजर आप आते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं, कुछ दरख्त झुकता है, तो ये हम भी अभी आप इजाज़त दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मैं किसी के लिए ये रवा नहीं रखता, ये इजाज़त नहीं देता, अगर मैं देता तो मैं ये कहता कि बीवी शोहर को सजदा करे। ये भी अब शोहर के मकाम को बयान करने के लिए, अगर मैं सजदे की इजाज़त देता तो ये कहता, लेकिन मैं किसी के लिए ये रवा नहीं रखता। और शरीयत मुहम्मदिया में सजदाए तहियत, सजदाए ताज़ीमी ये भी मना कर दिया गया, हराम करार दे दिया। लेकिन इसका हुक्म हराम है, ये कुफ्र नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। हम इसकी कोई पजीरा ही नहीं करते कि हम कहें किसी को भी सजदा करो, किसी पीर को सजदा करो, किसी मज़ार पे सजदा करो, कौन इसकी तालीम देगा? आप हमारी किताबें पढ़ें, दीन आप किसी एक के अमल को लेकर आप क्या लोगों को माजल्ला काफिर बना देंगे? ये बिल्कुल गलत। उलमाए सुन्नत की किताबें पढ़ के देखें, कितनी सख्त तंबीहात के साथ और सख्ती के साथ किताबों में वाज़े लिखा, कोई किसी पीर को नहीं सजदा करे, ना किसी मज़ार पर, ना किसी और, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त ही नहीं। हमारे उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि किसी की ताज़ीम के लिए कोई इतना झुके कि वो वैसे ही अद्दे रुकू तक पहुँच जाए, उसको भी नाजायज़ लिखा है, उसको भी नाजायज़ लिखा है। सजदे की बात तो बहुत, तो इसलिए हम इसकी पजीरा ही हरकत नहीं करेंगे, अगर बिलफर्द कहीं ऐसा होता। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर माज़ल्ला किसी को मुशरिक करार देना, ये लम्हा फिक्रिया है, ये उस आदमी के लिए कि जो माज़ल्ला किसी के बारे में یہ گمان رکھیں یہ کسی کو یہ قرار دے دیں. مزارات اولیاء یہ تو وہ جگہیں برکت والی ہیں کہ جہاں سے لوگ تلاوتیں، ذکر، درود، نعتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، اور یہ غرض لے کر وہاں حاضری دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ بن جائیں گے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. یہ دیں گے، یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جائیں گے، وسیلہ بن جائیں گے، اللہ سے لے کر ہمیں دیں گے. اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں اللہ سے لے کر ہمیں دیں گے. تو اس لیے ناظرین کرام ان مسائل کو، ان چیزوں کو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ فقط ایک مزار پر حاضری کی بات نہیں ہے ناظرین کرام، میں ایک گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک ہی چیز کو لے کر بعض اوقات کتنے عقیدے کی وہ خرابی کا سبب بنا دیتے ہیں لوگ اس کو، اور ان لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جو بالکل گئے وہاں، نماز بھی پڑھی، دعا بھی مانگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، بزرگوں کا وسیلہ دیا، گھر چلے گئے، جو وہاں بیٹھے ہوئے قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں، درود ہی پڑھتے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتے جا رہے ہیں، ان کو اگنور کر دیجیے. تو معاذ اللہ ان کو کہہ دیے کہ یہ یا شرک ہے یا یہ ہے. اس طرح کی باتیں نہ سننی چاہیے. کہ اگر سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی جس کے جو من میں آیا اس نے اپلوڈ کر دیا، ہر ایک کی گفتگو کو بھی، دین بھی سیکھنا ہے تو یہ ضرور دیکھو دین کس سے تم سیکھ رہے. انظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تمہیں شیطان بلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو. ان کی صحبت، یہ صحبت آگ ہے اور آگ میں لے جانے والی ہے، کہ جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے خراب ہوں. ایسوں کی دوستیاں، ایسوں کی صحبتیں، ایسوں سے اپنی بات چیت بڑھانا یہ بالکل منقطع کریں، ختم کریں. صرف اہل سنہ و جماع، علماء حق سے تعلق ہو اور انہی سے یہ عقائد سمجھیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے، بہت بڑے امام. آپ کے پاس جب دو شخص آئے کہ ہم سے کوئی قرآن کی بات سن لیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم سے نہیں سننی. اب ساتھ والوں نے کہا حضرت جی کیا مسئلہ ہے؟ بعد میں کہا جب وہ چلے گئے کہ وہ قرآن تو کہہ رہے تھے آپ سن لیتے ہیں. فرمایا ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی، تقدیر کا یعنی انکار کرنے والے، تو میں ایسے لوگوں کی بات کو کیوں سنوں کہ اگر وہ قرآن بھی کہیں تو کوئی قرآن کے ساتھ ایسی چیز ملا کر آگے رکھ دیں اور وہ دل میں اتر جائے. یہ آپ تو بہت بڑے امام تھے، یہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا. تو آج لوگ یہی کہتے نہیں پہلے سن لو، دیکھ لو، کچھ نہیں ہوگا، یہ سن میں بہت پکا ہوں، میں سن ہی تو رہا ہوں، میں نے اور کچھ نہیں کیا. پہلے تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ادھر جا کر وہاں جا کر وہ سن کے آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو سوشل میڈیا تو ہر کوئی سن رہے ہیں، ہر ایک کو سن رہے ہیں. تو بالخصوص جس کی گفتگو سے، جس کے کلام سے، جس کے انداز سے آپ کے عقیدے میں اگر قوت آتی، صحابہ اور اہل بیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے اور ایک یقینی کیفیت پیدا ہو، آپ کی شفاعت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں پر نظر رحمت فرمانا، یہ دلوں میں یہ کیفیات آپ کے اگر بڑھتی ہیں مرحبا، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے پیاروں کے بارے میں دلوں میں کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر ضرور آپ غور کیجیے گا کہ آپ کس کی گفتگو سنتے ہیں. عقیدہ سیکھنا ہے تو وہ بھی علماء حق سے سیکھیں، انہی کی گفتگو وہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے بہت ہی بس ایک تمہید کے طور پہ گفتگو کر رہا تھا، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچ گیا ہے. عقیدے کی اہمیت جب ہوگی تو پھر عقیدے کے تحفظ کے لیے بھی ہم کچھ کردار ادا کریں. علماء نے لکھا کہ جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت ایمان ہی نہ چن جائے، موت کے وقت ایمان ہی نہ چل جائے. تو اپنے آپ کو ان اکابرین کے ساتھ مربوط رکھیے، انشاءاللہ اس کی برکات آپ زندگی میں پائیں گے. اللہ پاک ہمارے عقائد کی، हिफाजत फरमाए और हमें इन्हीं अकायद पर, दुरुस्त अकायद पर इस्तिकामत अता फरमाए, हमारी नस्लों को भी ये सआदत अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आओ इल्म सीखे, आओ इल्म सीखे, आओ इल्म सीखे, आओ इल्म सीखे।